एक बंदा इंजेक्शन लगाता है आपको फील ही नहीं होता, दूसरा लगाता है तो स्वेलिंग हो जाती है। जिंदगी जैसी होगी, आमाल जैसे होंगे, मौत वैसी होगी। जैसा जियोगे तुम वैसे ही मरोगे, और जैसा मरोगे वैसा ही कल उठाए जाओगे। हदीस का खुलासा बता दिया आपने। देखिए, एक शख्स बहुत रोजे रखता है, नफिल भी, तो मोस्ट प्रोबेबली जब उसकी मौत का वक्त आएगा तो वो उस दिन रोजे से होगा। और एक औरत बड़ी कीमतें करती है, ताने देती है, चुगलियां करती है, गुस्से की तेज है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी मौत के वक्त इनमें से कुछ एक ट्रेलर चल रहा होगा। तो मौत तो किसी भी लम्हे आ सकती है, तो जब वो किसी भी लम्हे आ सकती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप मौत के वाक़े होने पर यकीन रख लें आज, तो अल्लाह का खौफ आ जाएगा, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी शुरू हो जाएगी, गुनाहों से दूरी शुरू हो जाएगी, और सबसे मज़े की बात बताऊं कि नेकियों में लुत्फ आएगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे लोग क्या कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, मुझे फजर नहीं पढ़नी, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मस्जिद, नहीं मेरे से ये नहीं पहना जाता। ये जो हमारी मस्ती है ना, मस्तियाँ, ये सब खत्म हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। माँ के कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के मराहल को जहन में लाइए। सबको बता, अब तो बच्चों को भी बता, ये हमारे ही बेवकूफों का दौर होता था जी, वो परी आई तो दे गई, तो रात छत फटी तो दे गई। इतनी अकल ही कोई नहीं थी कि ये छत फट के ठीक कैसे होगी रात में, कितने झूठ सिखाते थे हम बच्चों को। अब तो बच्चों को पता होता है मामा के बैली में बेबी है, वो उसको मैसेज कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं ना। आप वो कंसीव करने से लेकर डिलीवर करने के मराहल एक तरफ लिख लीजिएगा घर में, और दूसरी तरफ मौत और उसके बाद पेश आने वाले मराहल। मैं आपको स्टेप्स में बताती हूँ। मौत किसको कहते हैं, यानी जिसको लफ्ज़ मौत कहते हैं ना, वो क्या है? सबसे पहले इंसान पर निज़ा की कैफियत आ रही होती है, जिसमें इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, जुबान बंद हो जाती है। ही कैन फील इट बट ही इज नॉट अलाउड टू टेल अदर कि मेरे साथ क्या। किसी की निज़ा बहुत छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी को सडन डेथ होती है, कुछ की कई कई दिनों तक रू अटकी रहती है, यहां तक सूरत क़यामत बड़ी है। तैजा बलगतिल खुलकूम, ये खुलकूम होता है, ये गले की जगह, खरखरा नरखरा बोलते हैं शायद। अब हुआ क्या, जब आपके ऊपर निजा लगती है, आप का इस दुनिया से कनेक्शन बहुत वीक होने लग जाता है। जैसे कभी कभी आपको वाईफाई सिग्नल दिखता रहा होता है लेकिन कनेक्ट नहीं होता, नॉट कनेक्टिंग शोज, कभी वीक सिग्नल्स, डुबकियाँ, धड़कन डूबती है, कभी ऊपर होती, कभी इधर होती, कभी उधर होती, फिर रूह कब्ज हो जाती है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि रूह को उठाकर आसमानों की तरफ ले जाने की कोशिश होती है। अभी मैं आपको हदीस सुनाऊंगी तो ये सारे स्टेप आप टैली कर लेंगे। रूह को, हर एक ही रूह को, मोमिन की भी फाजिर की भी, बस दो करैक्टर रख ले उसके इर्द गिर्द सारे घूमते हैं, सबकी रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाना चाहते हैं, क्योंकि रूह आई आसमान से है। जैसे हमारे यहाँ फौत कोई नॉर्वे में होता है तो उसका जनाजा पाकिस्तान में लेके आते हैं, सारी जिंदगी पेरिस में बैठे रहे तो जनाजा जो है वो लेके आके खारी आके किसी गाँव में दफनाना है, क्योंकि जी अपनों में दफनाएंगे, हजारों का खर्चा करके बीसियों टिकट लगा लगा के, सिर्फ इसलिए कि बिरादरी को दिखा दें या कुछ भी, वट एवर, हमें क्या। लेकिन रूह को आसमान पे ले जाने के बाद, यानी जो निकल जाती है जिस्म से, उसके लिए ये एक बात आती है। फिर तीसरा काम जो हर एक के साथ होना है, या तो उसका नाम नेकों में लिखा जाएगा या बदों में, दो के बाद तीसरा कोई नहीं है। और फिर नेक्स्ट क्या है, रूह वापस बदन में लौटाई जाती है। ये कब होता है, ये कैसे होता है, ये हम हदीस में देख लेंगे। और फिर अगला स्टेप क्या होता है, मुनकर और नकीर आते हैं कब्र में, और फिर उनके जवाब के मुताबिक इंजाम है। क्या पता चला? लफ्ज़ कब्र हमें ये बता रहा है। मैं आपको यहाँ एक छोटा सा रिकमेंडेशन दूँ, यकीन करें कि आपकी रूह तक ऐसे सरशार हो जाएगी जैसे बेहतरीन मज़े की कॉफ़ी या चाय पीने वालों को मज़ा आता है। एक सूरत हमने की थी, सूरत तकासुर, हमारे इसी YouTube चैनल पे है, जो मैंने शुरू में बता दिया ना, इसी पे है। हमने ये भी रिसेंटली किया है, तकरीबन फ्यू मंथ्स अगो, पेरिस से सूरत तकासुर की इन डेप्थ तफसीर, उसमें वो आए थे ना, हत्ता जुर तुमुल मकाबिर, इस आयत को पढ़ लीजिए जाकर, इसकी तफसीर सुन लीजिए, तीन चार लफ्ज हैं वहां। मैंने आपको कब्र के मेरा हले छह मफहूम दिए कि कब्र को कब्र क्यों कहते हैं, क्योंकि लफ्ज कब्र हमारे लिए इतना अनहोना है मेरा हाल है, कि वो मुल्क जो कभी गए नहीं देखे नहीं, मीडिया से सुन सुना कर हम उनके लिए इतने कॉन्शियस हैं, लेकिन कब्र जहां किसी लम्हे भी जा सकते हैं, आज की रात भी मैं कब्र में जा सकती हूँ, आपको पता, इट्स रेडी, किसी को तैयारी करने की जरूरत नहीं है, जब मेरा वक्त आना है तो मेरी कब्र मेरा इंतजार कर रही होगी। और जब आप अपनी कब्र का सोचते हैं तो आपके जहन में ये जरूर बात आती है और आनी भी चाहिए कि मेरी कब्र कैसी होगी। अपने घरों की फिक्र होती, बेटी का रिश्ता कर रहे हैं तो जाके देखते हैं कैसे घर है, किधर रखेंगे बच्ची को, कमरा कौन सा देंगे, है ना सवालात। तो कभी अपनी कब्र को भी हम सोचें, क्योंकि जब आप कब्र के लव से ही मानूस नहीं है तो आप बाकी काम कैसे करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में से वो जो मैंने वहां मानी दी, आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा मैं यहाँ उस मूड में नहीं हूँ, और जरूरत भी नहीं है, जबकि एक चीज मौजूद है। लेकिन इतना बता दूं कि कब्र का मानी ही तोड़ने फोड़ने वाली होता है, टुकट, कब्र के लफ्ज को टुकट लिख लें बस, क्या काट देती है, बंदे का जोड़ जोड़ काट देती है, बंदे का दुनिया से रابطہ काट देती है, उसके अमाल को काट देती है। और ये जो आपका मेरा ख्याल है ना कि कब्र जमीन के ऊपर एक ढेरी का नाम है, जो मुमन हम कब्रिस्तान से गुजरते हुए देखते हैं, तो ये गलत है, ये कब्र की एक किस्म है, लेकिन जो डूब के मर गए फिर उनकी कब्र नहीं है, जो किसी एयर क्रैश में चले गए जल गए, क्या उनकी कब्र नहीं है? है। कब्र असूलन कहते उस जगह को, उस ठिकाने को है जहां बंदा मरने से लेकर क्यामत तक का वक्त गुजारता है, ट्रांजिट लॉन्च। कुछ लोगों की मट्टी में बनती है तो वो सामने दिखने लग जाते हैं, कुछ की नहीं बनती, किसी की दिखती नहीं, किसी की का लोग मजार भी बना लेते हैं। तो जो कब्र का लफ्ज है ना, ये हमारे लिए एक इबरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंसान को सोचने पे माइल करता है। बस दो लफ्ज लिख लें, दो जुमले लिख लीजिए कि कब्र गुनाहगार के लिए जाए अजाब है और मोमिन की आरामगाह है, मोमिन के लिए रेस्टिंग प्लेस है, रेस्ट इन पीस कहते हैं ना, गुरु ने लिखा होता है रेस्ट इन पीस, और फाजिर के लिए ये कब्र की जगह। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, कि जब किसी की मैयत को दफनाया जाता है तो उसके पास काले रंग के नीली आंख वाले दो फरिश्ते आते हैं, इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। क्यों भला? लफ्ज क्या है? मुनकर मुफअल और नकीर फाइल, दोनों में एक लफ्ज कॉमन है, नून का अफराद, नकीरा अननोन अजनबी। आप लोग उर्दू में लफ्ज बोलते हैं इनकार, ये वही लफ्ज है। यानी मुनकर नकीर को मुनकर नकीर क्यों कहते हैं? कि उनकी शक्लें, उनके हाल हुलिये इतने अननोन अनयूजल होंगे कि बंदे ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। स्ट्रेंजर्स, एकदम दो लंबे चौड़े ड्रैकोला किस्म के इंसान अंदर आने लग जाए तो हम सब घबरा दें। तो फरमाए बड़ी ही खौफनाक शक्लों के होंगे, या जो बड़ी अजनबी शक्लों के होंगे। और फिर वो दोनों पूछते हैं कि तू इस शख्स के बारे में क्या कहता था? तुम वो जो मैयत है, वो कहता है वही कहता था जो खुद कहते थे कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है, और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। यानी वो गवाही दे देता है अपने कलमे की, और उसके बाद कहते हैं हमें मालूम थी ये बात। और उसकी कब्र को फिर कुशादा किया जाता है, 70 गज खुली कर दी जाती है, और फिर उसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर उसको कहा जाता है कि नम क नौ मतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। उस वक्त फिर वो मरने वाला नेक बंदा, जिसको कब्र में ही जन्नत की खिड़की खोल के दिखाई जाती है, वो कहता है मुझे मेरे घर वालों के पास वापस भेजो। वो नई दुल्हन अली मिसाल याद रखे, कहते कहते हैं मुझे मेरे घर वालों के पास भेजो, मैं उनको जाके बताऊं कि तुमने मेरे लिए यहाँ क्या खूबसूरत चीजें जमा की हुई हैं। बच्चियों को शौक होता है ना, अपनी ससुराल की चीजें दिखाती हैं, बताती हैं, ये मिला, ये मेरा कमरा ऐसा है, ये है, मोमिन के लिए मौत बिल्कुल ऐसी। आप क्यों घबरा रहे थे? कोई घबराने की बात नहीं है, अपने अमाल से डर लगना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला से रहमत और अच्छी उम्मीद के लिए अब मजीद काम करेंगे और अच्छा करेंगे। वो कहते नहीं, तुम्हें वापस हम नहीं भेजेंगे, अब तुम सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है और उसको सिर्फ वही जगाता है जो उसको बहुत महबूब होता है, यहाँ तक कि फिर अल्लाह उसको उसकी ख्वाबगाह से उठाएगा और फिर वो इंतजार करता है मरने वाला कि जल्दी क्यामत आए और मैं उधर जाऊँ। इसके बरक्स जो मुनाफिक है तो वो कहता है जो लोग कहते थे मैं तो वही कहता था। फरिश्ते पूछेंगे मन रबू का, कहते लादरी, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। ये वो वर्बल कलमा पढ़ने वाले, 1,25,000 दफा पढ़ के रखा हुआ है रादारी का, एक दफा नहीं सोचा कि लफ्ज इलाह का क्या मानी और अल्लाह का क्या मानी। बस मोहम्मद रसूलुल्लाह है कोई पता नहीं, और इस तरह का मामला उसके साथ होता है कि फिर उसको जमीन दबोचती है, जैसे वो स्क्रैम्बल नहीं करते आप, फिर उसकी पसलियां इधर उधर हो जाती हैं, यानी तंग हो जाती है कब्र। व मनार आदान जिक्री फा इन लहू मई शतन का, सूरह तौहा में आता है कि जिसने हमारी नसीहत से मुंह फेरा हम उसकी जिंदगी उस पर तंग कर देंगे। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, घुटन, घबराहट, दिल उड़ता बंदे का, ये दुनिया में भी, ये कब्र में भी होगा और आगे जाके भी होगा, और फिर वो इसी अजाब में मुबतला रहता है यहां तक कि अल्लाह उसे उसकी ख्वाबगाह से उठाएगा। ये तिर्मिजी की रिवायत का खुलासा था 1071। तो दुनिया में हम अपना हिसाब खुद ले लें ताकि मुनकर नकीर के सवालात मुश्किल ना लगें। कोई काम करना होता है ना तो उसकी रिहर्सल कर ली जाती है, जब रिहर्सल कर लेता है ना इंसान तो वो काम उस वक्त फिर आसान हो जाता है। आप और मैं कभी कभी मरने की रिहर्सल कर लें, कभी तसव्वुर में लाएं, अपनी डमी कब्र बनाएं। हमारे असलाफ के बारे में इस बुक में वो भी एक पूरा टॉपिक है, असलाफ का कब्र के बारे में जो रवैया था, अपने घरों के पीछे जैसे आंगन होता था पहले दौर में कोई सहन, तो उसमें गड्ढे खोद लेते थे और रात का कुछ वक्त उधर जाकर गुजारते थे, तैयारी कर रहे थे कि जब मुझे यहाँ आना पड़े तो मुझे अजनबियत ना हो। तो हाँ सिबू कबलन, तो हाँ सबू, अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कभी कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो ठहर जाते, इतना रोते कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने कहा कि आपके सामने जन्नत का जिक्र आता है आप नहीं रोते, जहन्नुम का जिक्र आता है आप नहीं रोते, कब्र के बारे में आप क्यों इतना रोते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लम से ये बात सुनी है कि आखरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है, और अगर किसी ने कब्र के अजाब से निजात पाई तो इसके बाद के मराहिल आसान हो जाएंगे, और जिसे अजाब कब्र से निजात ना मिल सकी तो इसके अगले मराहिल सख्त होंगे, उसकी मंजिलें अगली सख्त होंगी। फिर कहने लगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घबराहट और सख्ती के एतबार से कब्र की तरह किसी और मंजर को मैंने नहीं देखा। ये तिर्मिजी की रिवायत है 2308 नंबर की, और ये भी बात इस बुक में आप पढ़ेंगे बाद में कि कब्र एक बार जरूर बंदे को दबाती है चाहे बंदा नेक हो या बद। और इस पे फिर आप वाकया सुनिएगा हजरत साद बिन माज की वफात का, जिनको गजवा खंदक में तीर लगा था लेकिन गजवा बनु कुरैजा के बाद उनकी जान निकली थी। बड़ा ईमान अफरोज वाकया उनकी वफात का। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये तिर्मिजी की रिवायत है 2460। और वो जर्नी ऑफ सोल जो मैंने आपको बताया वो तो इतनी खूबसूरत हदीस है कि जिसको आप अगर एक गो में सुन लें, मैं आपको हदीस भी बता दूंगी, लेकिन सिर्फ स्टोरिकल अगर बताने की वजह से कि आपको वो चीज़ आसान लगे, तो उसके लिए आप देखिए कि रूह सबकी निकलती है, मोमिन की रूह आराम से निकलती है। जैसे आपने मिसाल दी कि खुशबू की शीशी यानी परफ्यूम बॉटल खुली छूट जाए, क्या होगा? का खुशबू उड़ जाएगी, पीछे क्या रह जाएगी? बॉटल। का मोमिन की रूह खुशियां मनाती हुई जिस्म से उड़ती है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमईना इर्जिला रब्बी की राधियत मर्दिया फ़दखुली फ़ी वादी वदखुली जन्नती। सूरत वाक़िया पढ़ते होंगे, फ़रोहम व रईहान, खुशबुओं के बके, फ्लावर्स के वो फूलों के गुलदस्ते दे दे के फरिश्ते मोमिन की रूह निकालते हैं, वेलकम वेलकम मरहबा कम ऑन। हम तुम्हारा इंतजार करते। सीधी सी बात है, जिस मेहमान की खुशी होती है दिल नहीं करता जमीन पे बिछा दे, हाथों पाँव क्या कहते हैं रास्तों में पलके बिछा दे, और जिसको देखने को दिल ना करे। ये आप हैं क्या? ये है मौत, ये है कब्र, ये है आपका जर्नी अफसोस। जब एक बंदा दुनिया से जाने के करीब होता है, नेक शख्स के पास बड़ी खूबसूरत शक्लों वाले फरिश्ते आके बैठ जाते हैं। हदीस में आता है कि सूरज की रोशनी की तरह उनके चेहरे चमकते हैं। फिर वो खुशबूदार कफन लाते हैं जन्नत से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जब वफात का वक्त करीब आया था तो उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि मुझे पुरानी चादरों में कफन देना, नई चादरें जिंदों के काम आएंगी। और फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते और कहते हैं वैसे भी तो ये थोड़ी देर में उतर ही जानी है। यदि मोमिन की आप चाहे उसको टाट में कफन दे दें, फटा पुराना दे दें, उतर जाना है। और इसके बरक्स आप जमजम में डबो डबो के कफन दें, जमजम का कफन क्या करना है, नबी के जिस्म से लगा हुआ कुर्ता पहनाया गया था अब्दुल्ला बिन उबई को, वाकई आपने सुना होगा। तो फायदा हुआ, आप कलमा लिखी हुई चादरों में कफन दे दें तो दिल में ही ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, अल्लाह के रब होने के तकाजे नहीं पता, शुरूते ला इलाहा ही नहीं पता, तो वो आप 1,25,00,000 दफा कलमा लिख दें कोई फायदा नहीं होना। गोल गोल के पिला दें उसको कलमे के पानी पिए हुए, कुछ फायदा नहीं होगा। असल बात यह कि इस दुनिया में अपने लिए कुछ कीजिए। और जब फिर उस मोमिन की रूह को खुशबूदार कफन में लपेटा जाता है तो कहा जाता है जाओ इसको आसमान पे लेके जाओ, मदरलैंड। फिर वो जब जाते हैं ना तो पहला दरवाजा आसमानों का नॉक होता है। सूरत अलराफ में आयत है, जिन लोगों ने कुफर की और तकजीब की, ला तुफत्तहु लहुम अबवाब अस्समा, उनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते। तो उसकी बहुत सारी तफसीरों में से एक साथ ये भी है कि जब उसकी रूह को आसमान पे ले जाया जाना चाहते हैं तो दरवाजे नहीं खुलते, लेकिन मोमिन के लिए खुल जाते हैं। बड़ी मोहब्बत से पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान के फरिश्ते उसके साथ साथ जाते हैं वेलकम करते हुए, और बिल आखिर वो 7वें आसमान पे अल्लाह सुब्हान तआला के सामने रूह पेश की जाती है, और वो रूह अल्लाह को देखते हुए सजदे में चली जाती है। ये कौन सी रूह जाएगी जिसको दुनिया में सजदों का शौक था? फिर अल्लाह जब तक चाहेंगे वो सजदे में रहेगी, फिर अल्लाह ताला उसको उठवाएंगे और कहेंगे जाओ मैंने इसके लिए जो तैयार किया इसको दिखा के तो लाओ। फला तालम नफ्सु मा खुफिया लहु मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या तैयार किया। फिर उसको जन्नत का एक टूर कराया जाता है, जैसे बुकिंग ऑफिसर्स जो होते हैं ना वो कहते हैं जाएं जरा इनको साइट का विजिट करवा के आए। फिर वहां वो पुराने अपने फौतशुदा जो रिश्तेदार थे उनको भी मिलता है, फलां भी है, अच्छा अब्बा भी हैं, अम्मा भी हैं, खाला भी हैं, और कोई एक नहीं दिखता। कहते वो किधर है? कहते ये तो इधर नहीं आया। फिर अफसोस करते हैं कि अफसोस वो तो सिर्फ जीन के घड़ों में गिर गया होगा। ये सारा कुछ करने कराने के बाद उस रूह को दोबारा अल्लाह के सामने पेश किया जाता है, और फिर वो वहां से हुक्म मिलता है कि जाओ अब इसकी रूह को इसके जिस्म में डालो क्योंकि अभी इसका कब्र का हिसाब किताब बाकी है। हदीस में आता है वो सारे फरिश्ते वापस आते आते उस रूह को दुनिया में जब लाते हैं, इतनी देर में मोमिन का कफन दफन हो चुका होता है, उसका जनाजा तैयार है, वो सारे फरिश्ते उसके जनाजे में शामिल होते हैं, और बड़ी मोहब्बत से जब उसको ज़मीन में कफन में से निकाल कर दफन कर दिया जाता है, यानी जैसे भी जो मस्तून तरीका है, तो वो रूह फिर उसके जिस्म में डाली जाती है। अब इस पे जो जिसका दिल करता है वो लिखता है, बोलता है। आज फितना इनकार हदीस, अजाब कब्र कुछ नहीं, मंतक दलीलें, और जितना मीडिया आम हो गया हर एक को बोलने की इजाज़त मिल गई उतनी बातें। मैं आपको इस पर एक बात कहूंगी, यू मैं नूना बिल गईब, गैब का मामला है, अल्लाह ने पहले बता दिया, आखरत कबर हशर गैब है, जब जाएंगे तो देख लेंगे। हमारा काम है कि स्टिक टू कुरान सुनना। कैसे होता है, ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुर्दा अपने ऊपर से गुजरने वालों के कदमों की छाप सुनता है। अब आपके कैसे कब्र में कैसे बैठेगा, फिर सांस नहीं घुटेगा, फिर ऑक्सीजन आएगी, भाई आपको क्या मसला है? आप माँ के पेट में इतने महीने रहकर निकले थे तो क्या हुआ था कुछ? बस खत्म। मोमिन की कब्र जन्नत का एक टुकड़ा, उसकी जन्नत की खिड़की खुलती है। तीन सवाल, मन रब्बू का, मर रसूलू का, परमा दीनू का। इसको अरबिक में असूले सलासा कहते हैं। असूल तो वही उर्दू के असूल रूल्स, सलासा कहते तीन को, थ्री फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। इस पे मैंने लाहौर से आज से कोई 5-6 साल पहले एक बुक पढ़ाई थी, यही कब्र के तीन सवाल कह लें उसका नाम, लेकिन उसका नाम इस्लाम के यही तीन बुनियादी चीज़ें थी। पूरा दीन इन तीन सवालों के गिर्द घूमता है हमारा, आज यही नहीं पता। हम लोगों की छोटी छोटी गुनाहों और खराबियों को डिस्कस कर रहे होते हैं, असल में पीछे उनका अकीदा खराब होता है, ताल्लुक बिल्ला कमज़ोर होता है। लेकिन बहरहाल मोमिन के लिए कब्र बड़ी प्यारी चीज़ है, उसको अल्लाह ताला मुख्तलिफ इज्जाज़ात देते हैं और फिर वो इंतज़ार करता है क़यामत का, क्योंकि वो जो ऊपर जन्नत देखा है ना, वो अब उधर जाना चाहता है। कहा जाता है नहीं, अल्लाह का वादा है कि वो क़यामत के बाद देखनी है, और इस तरह मोमिन कब्र में मुतमईन कर दिया जाता है। उसकी कब्र में एक खूबसूरत इंसान दाखिल होता है, कहता है अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तन्हाई बांटने के लिए भेजा। कहते तुम हो कौन? कहते दुनिया में भी मैं तुम्हारे साथ ही था। कौन? तुम्हारे नेक अमाल। इसके बरक्स अब तस्वीर का दूसरा रुख भी थोड़ा सा ले रहे 2-4 जुमलों में। ये सब कुछ भी होता है किसके साथ? फाजिर, काफिर, फाजिर, मुनाफिक, जो जिस दर्जे का उसके साथ उतने दर्जे का होगा। लेकिन उसकी रूह बड़ी मुश्किल से निकलती है। उसके पास जो फरिश्ते भेजे जाते हैं वो बड़े करीक शक्लों वाले होते हैं, खौफनाक। उसकी रूह जिस्म से चिपक चिपक जाती, कभी च्विंगम बालों में चिपक जाए और निकालने की सूरत में मेरा ले जड़ भी खींच जाती है। ये है बद नाजी आती गरका, छुपती है उसकी रूह जिस्म में, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा कैसा काम बड़ा बुरा होना है। खींच के निकाली जाती है। मलकुल मौत अपने हेल्पर्स की मदद से पूरे जिस्म से उसके एक एक, आपको तो एक एक बाल की रूह खींचती है। कभी वैक्स कराया हो तो जान निकल जाती है, जब एक पट्टी निकले तो वो उतने बालों की रूह निकलती है, और जब पूरे जिस्म के एक एक पोर की रूह निकलेगी। आपने फरमाया कि कांटों वाली शाख के ऊपर एक गीला दुपट्टा डाल दिया जाए और उसको खींचा जाए तो क्या होगा? कतार तार हो जाएगा। कैसे फाजिर की रूह निकलती है? और अल्लाह चाहे तो मोमिन की रूह को भी तकलीफ से निकाल ले, या फाजिर को भी बगैर तकलीफ के निकाल ले, ये एक्सेप्शन भी मौजूद है। हमें तो अपनी फिक्र करनी है। फिर फाजिर की रूह जिस्म से निकल के उसको बददुआ देती है कि जैसे तूने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह करे तुम्हारे साथ भी बुरा हो। और बिलाखिर फिर उसकी रूह जब निकलती है, बदबू फैल जाती है, जहन्नम का टाट, जूठ और बदबूदार कफन, उसमें लपेट के उसको जब ऊपर ले जाना चाहते हैं, पहले ही आसमान से रिजेक्ट, नो ला तुफत्तहु लहुम अबवाबस समावात, नहीं खोले जाएंगे दरवाजे। और फिर बिलाखिर उसकी रूह को ऊपर से पटखा जाता है, और फिर उसके साथ भी कब्र के वो तीन सवाल हैं, और तीनों का जवाब कोई नहीं आता। लादरी ला, दो जवाब देगा वो, लादरी, आई डोंट नो, आई डोंट नो। लफ्ज़ अल्लाह उसकी ज़ुबान पे नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह का हक नहीं दिया, रसूल का नाम नहीं आएगा, इस्लाम का लफ्ज़ ही आता था वो भी नहीं आएगा। और दूसरा वो क्या कहेगा? काश मैं पढ़ता लिखता। और उसकी कब्र में आग लगा दी जाती है। ये हर एक से मुख्तलिफ होगा। आप इंशाल्लाह इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बिल आखिर फिर उसकी कब्र में एक बड़ी करी शक्ल का फरिश्ता आता है, कहते मैं तेरे साथ रहूंगा। वो कहेगा मैं तो पहले इतना परेशान हूँ, तुम और आ गए हो मुझे तंग करने। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बुरे अमल हूँ, दुनिया में भी तुम्हारे कंधों पे था, यहाँ भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसको कहा जाता है अब तू क़यामत का इंतज़ार कर, तेरे साथ वो वहाँ बसल काम वहाँ होगा। और वो कहता है काश कभी क़यामत ना आए। अल्लाह अकबर, यहाँ भी बात नहीं पूरी होती, इससे भी बहुत सख्त है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ज़िंदगी में हक़ अदा करने की तौफीक दे। करें क्या? चल पता भी लग गया कि ये सारे ऑपरेशन के मराहल हैं, लेकिन करें क्या? नंबर एक, इस ज़िंदगी को गनीमत जाने। इख्तनिम खमसन कबला खम्स, पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत जानिए, जिसमें एक अलहयात, قبل مماتکا، اس زندگی کو اپنی موت سے پہلے. ہمارے کدھر گئے پیارے؟ کھڑے کھڑے لوگ جا رہے ہیں، جوان بچے جا رہے ہیں. دو ماں کی لڑکی شادی شدہ بیوہ ہو گئی، کوئی پوچھ کے جاتا ہے؟ کوئی بتا کے جائے گا؟ دوسری بات کریں کہ دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزاریں. میری آپ کی مرضی زیادہ دن نہیں چلنی، اگر ہماری مرضی چلتی تو ہم میں سے کوئی مرتا ہی نہ. اس پہ بھی سیریز میں ایک لیکچر ہے، میری مرضی کلچر، مائی چوائس، اٹس مائی لائف سٹائل. آج یہ بھی بڑا سلوگن ہے، گجرات میں ہوا تھا یہ لیکچر دو تین ویک پہلے، اسی پہ آپ کو ملے گا، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیے. تیسری بات، صدقہ جاریہ کا بیج بول لیجئے. آج آپ اس گھر میں آئے، آپ سب کی نیت بہت اچھی ماشاءاللہ، کوشش بڑی اچھی. کوئی ایسے بھی آ گیا ہوگا، چلو باجی نے بلایا ہے، فلاں نے بلایا ہے، اس نے بلایا، لیکن دل میں کسی کے ایمان کا بیج اگر آج ڈل گیا، یہ اس گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. آپ کی ہر نیکی ان کے اکاؤنٹ میں پہلے جائے گی، آپ کے پہ بعد میں آئے گی، اور آپ کی کمی نہیں ہوگی. کتنے مواقع ہمارے پاس نیکیوں کے، کتنی نعمتیں ہمارے پاس اللہ کے رستوں میں، اور ہم صرف دنیا میں کھوک کے ختم ہو گئے. آپ بچے کو 1000 کا نوٹ دیں اور بڑے کو دیں، دیکھیے کیسے خرچ کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو 1000 کے نوٹ سے بھی کم کی ویلیو پہ خرچ کر رہے ہیں اس وقت، سوچتے ہی کم ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے. اسی طرح نیک اعمال کرنے میں جلدی کیجیے. قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے، اس کے لیے آج کوشش کریں. قبر کے عذاب سے بچنے والے اعمال بہت سارے ہیں، اور اگر ہم اس میں سے ایک سورت کو آج پڑھنے کی، سمجھنے کی نیت کر لیں، سورت ملک. اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابو داؤد 1400 روایت کا نمبر ہے، کہ قرآن کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے، اسے پڑھنے والے کی وہ سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک، صرف سورت ملک کی ہی تفسیر سن لیجیے. الحمدللہ نیٹ پہ بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ہے، جس کا مرضی سنیے، جس کی بات دل میں لگ جائے. اسی طرح عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعائیں یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، میں چند دعائیں آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اس موضوع کو آپ مور الیبوریٹڈ بعد میں خود سن سکتے ہیں. اس وقت ہم چند دعائیں مانگتے ہیں جو ساری قبر کے عذاب سے بھی متعلق ہیں اور کچھ اور سات چیزیں بھی ہیں، دہراتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں کفر سے، یعنی کہ میں کبھی کفر کروں، فقر سے، یعنی غریبی آئے، اور عذاب قبر سے. اگلی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. یہ بخاری کی روایت ہے، 1377. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتی ہوں. اس طرح کی دعائیں اپنا معمول بنائیے. اور ایک چھوٹی سی چیز جس پہ انشاءاللہ اپنی بات کو پورا کر دوں گی، وہ کیا ہے؟ کہ اس زندگی کو ایٹ لیسٹ ایک بار قرآن سمجھنے کا ذریعہ بنا لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.